का था, रूप वही रूप नया।
गाथा में आप सुन रहे हैं सुधा ओम डिंगरा की लिखी कहानी फंदा क्यों
का दूसरा एवं अंतिम भाग।
जमींदार से चोरी छिपे मेक्सिकन साथी मजदूरों से बख्शिंदर ने ग्रीन कार्ड लेने की बात चलाई और उसकी कीमत चुकाने की तरफ इशारा भी किया। बहुत से पुराने श्रमिकों ने इसी तरह ग्रीन कार्ड लिए थे। सारी बातचीत संकेतों और कम बोलचाल से ही तय हुई थी। बिशन सिंह के सुपरवाइजर की उन पर हर समय नजर रहती थी, पर उनके पास तो पासपोर्ट नहीं थे। वे तो बिशन सिंह दोसांझ ने अपने पास रखे हुए थे और वही उन पर वीजा लगवाने भेजता था। अब वे क्या करें? कई दिन विचार विमर्श चलता रहा। अंत में मोहन ने बिशन सिंह से बात करने की सोची। वह जानता था कि मालिक से पासपोर्ट लेना आसान नहीं होगा। वह बख्शिंदर से ज्यादा निडर और जोखिम उठाने वाला नौजवान था। सोचकर ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बड़ा दमदार था वह। दोसांझ की आंखों में आंखें डालकर बोला था, सर जी, हमारे पासपोर्ट हमें वापस कर दीजिए। क्यों? बिशन सिंह की रोबदार आवाज हवा में लहराई। अब हम और इस तरह नहीं रह सकते, हमें वापस जाना है।
वापस जाना है या ग्रीन कार्ड लेना है?
ग्रीन कार्ड कहां से लेंगे जी? मैं अगर पासपोर्ट ना दूं तो? हम पुलिस के पास चले जाएंगे।
जानते हो फिर क्या होगा?
जो होगा देखा जाएगा। हम तो कंगले फटेहाल श्रमिक हैं, एक जेल से छूट दूसरी जेल में जा बैठेंगे जी। कम से कम आराम की रोटी तो खाएंगे, अन्यथा वह हमें भारत भेज देंगे। नुकसान तो आपका ही होगा जी। कई राज खुल जाएंगे, कई केस बनेंगे, कई कामगार डिपोर्ट होंगे।
मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो?
आप जो समझना चाहते हैं समझ लें। हम पर आपका एक कर्ज था यहां लाने का, वह हम कई सालों से चुका रहे हैं। दोसांझ सोच में पड़ गया। भारत में होता तो इसको कब का ठीक कर लेता, पर अमेरिका में एक सीमा तक की मनमानी कर सकते हैं। उसके बाद कानून की ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची होती है जिसका कोई रावण उल्लंघन नहीं कर सकता। उसकी समझ में आ गया था कि नौजवान खून खोल चुका है, ये सिरफिरा कुछ भी कर सकता है। अगर ये कानून की शरण में चला गया तो वह तबाह हो जाएगा। इसके पास गवाने के लिए कुछ नहीं, पर वह लुट जाएगा। उसने पासपोर्ट वापस देने में ही बेहतरी समझी और कई वर्ष वह उससे कड़ी मेहनत करवा चुका था। अपने पैसे और इस देश में लाने की वसूली भी कर चुका था। उसने मोहन का पासपोर्ट लौटा दिया।
सर जी, बख्शिंदर बाजी का पासपोर्ट, वह खुद आकर ले जाए। मैंने दोनों के पासपोर्ट मांगे थे, सिर्फ अपना नहीं।
दोसांझ ने उसकी ओर घूर कर देखा और दूसरा पासपोर्ट उसकी तरफ फेंक दिया। पासपोर्ट मिलने के कुछ दिन बाद एक मैक्सिकन
दो लड़कियों को लेकर आया। उस आदमी से बख्शिंदर पहले ही बात कर चुका था। 5,000 देना तय हुआ था। उस समय $5,000 बहुत बड़ी रकम थी। चारपाई पर बैठे मोहन सिंह के आगे सब यादें चलचित्र की भांति चल रही थी। उन्होंने कुछ पैसे अपने पास से और कुछ दोस्तों से उधार लेकर उस मेक्सिकन को दिए थे। कोर्ट में जाकर कागजी शादी हुई थी और फिर लड़कियां अपने घर चली गईं। जिस दिन ग्रीन कार्ड मिला था दोनों दोस्तों ने खूब जमकर शराब पी थी और धुत होकर नाचे थे। पी के शराब जट ने जद बुड़का मारिया बामनी कोठी विच जा छिपी। वे भंगड़े की इन बोलियां बोल बोल कर नाचे थे। ग्रीन कार्ड मिलने के कुछ महीने बाद कोर्ट में जाकर आपसी समझौते से उन दोनों ने तलाक ले लिया था। तत्कालीन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को गोली उन्हीं दिनों लगी थी और अमेरिका में राजनीतिक असुरक्षा का दौर था। अप्रवास के नियम सख्त नहीं थे जितने अब हैं आतंकवादी हमलों के बाद। उनका सब काम आसानी से अधिक पूछताछ के बिना हो गया था। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद लैंडलॉर्ड का व्यवहार भी उनके प्रति बदल गया। अमेरिका के नियम अनुसार उसने उनकी पगार बढ़ा दी और अमानवीय बर्ताव भी बंद कर दिया। उसे भी पता था कि अगर उसने अपना आचरण नहीं बदला तो वे दोनों उसे छोड़ जाएंगे। कई दूसरे जमींदारों की उन पर नजर थी। वे दोनों बहुत अच्छे सच्चे और खून पसीना बहाने वाले श्रमिक थे। भारत जाने से पहले वे पैसा जोड़ना चाहते थे। उसने दिन रात एक कर दिया। खेतों में काम करने के साथ साथ कोका कोला की फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट काम किया। सप्ताह अंत ग्रॉसरी स्टोर में काम किया। दो दो नौकरियां करके उसने पैसा जोड़ा। बापू का कर्ज उतारना था, बहनों की शादी करनी थी। सुखद भविष्य को वह देखने लगा था। लहराते खेतों में खड़ा बापू, खूंटे से बंधे बैल, कोने में ट्रैक्टर, घर में गायें, दूध दही लस्सी की बहारें, माँ के हाथों में गोखड़, बहनों के उजले कपड़े। बख्शिंदर बहुत आजाद हो गया था। वह नाइट क्लबों और पबों में जाने लगा। वहीं उसे एक अमरीकी लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। 10 साल बाद वह दोनों अपने गांव साहनेवाल गए। ढोल बजाता बापू मोहन को लेने आया था। उसके कानों में ढोल की थाप गूंजने लगी। कई पुरानी यादें भी कितनी मधुर होती हैं। कहते हुए उसका चेहरा उगते सूरज की ओर देखते हुए चमक उठा। उसके परिवार ने अपनी ही बिरादरी की यूपी में जन्मी पली जसबीर से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद तो उसका जीवन ही बदल गया। जसबीर पढ़ी लिखी थी, उसने मोहन के साथ घर और बाहर संभाल लिया। किसान का बेटा मोहन उपजाऊ जमीनों को ढूंढता रहा और जसबीर उनके लिए पैसा जुटाती रही। उसने घर में नौकरी पेशा औरतों के बच्चे रखने का एक डे केयर खोल लिया था। उन बच्चों के साथ ही उसके अपने बच्चे भी पलने लगे। गोली मारकर मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी।
उससे पनपी राजनीतिक उथल पुथल ने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हिला दिया था। खेतीबाड़ी की जमीन बहुत सस्ती हो गई थी। उस समय उसने काफी जमीन खरीद ली और वह अमेरिका का किसान सरदार मोहन सिंह हो गया। 3 बेटों और 2 बेटियों का बाप, 100 एकड़ जमीन का मालिक, 4 मंजिला घर है जिसका गैराज में महंगी कारें खड़ी हैं, बेटों के 2 गैस स्टेशन, 2 होटल हैं। उसका विवेक जाग उठा। सूखा तो यहां भी होता है, बारिशें फसलें खराब कर देती हैं, अंधड़ खड़ी फसलें उखाड़ देते हैं, पर ऐसे में सरकार मदद करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां सहायता करती हैं और अमीर लोग अनुदान देते हैं। भारत में कोई उनकी मदद क्यों नहीं करता? फिर बुद्धि ने विवेक से बात की, जरूर करते होंगे, भारत सरकार समृद्ध है और देश में बहुत से अमीर घराने हैं, कई संस्थाएं किसानों के लिए काम कर रही हैं, पर वहां की अवसंरचना ढांचा इतना भ्रष्ट है कि वह सब सहायता रास्ते में ही रह जाती है, गरीब किसान तक पहुंच ही कहां पाती है, अमीर किसान या बीच के लोग ही वह सब ले जाते हैं, गरीब किसान को तो उनका पता भी नहीं चलता। जब तक देश की व्यवस्था और ढांचा भ्रष्ट है तब तक किसान मरता रहेगा, गले में फंदा डलता रहेगा। जसबीर की बात याद आती है, दाजी परदेश के मालपुड़ों की बजाय देश की सूखी रोटी भली, बहुत पैसा कमा लिया, चलो अब लौट चलें, बच्चों को यहां रहने दें, हम वहां जाकर खेती बाड़ी करेंगे। कहां खेती बाड़ी करेंगे जसबीर कौरे, जहां मेरे किसान भाई मेरी बिरादरी के लोग जहर खा रहे, गले में फंदा डाल रहे हैं, अपनी पत्नियां तक बेच रहे हैं। वह दुख के सागर में डूबने लगा, उसमें गहरे उतरता गया, उसे महसूस होने लगा कि जहर उसके गले में है और फंदा कसता जा रहा है, उसका शरीर ढीला हो रहा है, आंखें बाहर आ रही हैं। वह अपने आप को मरता देख रहा था। जसबीर की आवाज ने उसे चौंका दिया, दारजी प्रभात वेले आप यहां बैठे हैं, आपकी तबीयत तो ठीक है, किसी को बुलाऊं कि आपको डॉक्टर के पास ले जाए? मोहन सिंह की तंद्रा टूटी, उसका हाथ अपने गले पर गया, सब कुछ ठीक था।
अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम डिंगरा की लिखी कहानी फंदा क्यों
का दूसरा एवं अंतिम भाग।
गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।